बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट रिलेवेंट पार्ट को याद करना ये माटी का घर नहीं है, उनके चेहरे पर ही रौनक आ जाती है जो उस मोस्ट रिलेवेंट पार्ट को याद करते हैं। परंतु यहां तो साधन को याद नहीं करते तो शक्ल मुरझाई हुई दिखाई देती है, क्यों उड़े देते हैं, क्योंकि मुरझाई हुई दिखाई देती है, क्योंकि बाप को उस लव से याद ही नहीं करते। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है, कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है। किस्म किस्म के होते हैं, कोई कोई तो पुराने घर में जाकर उनको पूज पड़ते हैं तो यहां भी रहते हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, ये चयन अंत समय का है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों के कोई गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ये अभी का वह नहीं, अभी मैंने कभी का अंत समय कब है, अंत समय क्या पता है, अंत काल जो स्त्री से मेरे अंत माना कब, वो तो अंत बता दिया दुनिया में जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, यहां कौन सा अंत समय, वो ही अंत समय है जब हम बच्चे थे अभिमान को पूरा पूरा छोड़ेंगे, कोई जीते जी छोड़ेंगे और कोई शरीर छोड़ने के बाद उनको जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा धर्मराज की सजाओं से। तो बोला ये गायन समय का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लम के गोप गोपियों से पूछो, तो गायन कब होता है, प्रैक्टिकल बात होती है तब गायन होता है, ये ऐसे ही गायन हो जाता है। जरूर प्रैक्टिकल में कोई गोपी बल्लम होता है, गोप गोपियां भी होती है, तब उनका गायन हुआ होगा। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बात को याद करना वो अवस्था अभी होनी है, क्या समझना अपन को, गोप और गोपी, गोप मन गुप्त पुरुषार्थ करने वाला और गोपी माना भी गुप्त पुरुषार्थ करने वाली, बाप से खुद सर्व संबंध जोड़ने वाले और जोड़ने वाली, उनको कहा गया गोप गोपियां। उस रहस्य को वो गोप गोपियां ही जानते हैं, इसलिए उसकी यादगार आज भी रासलीला दिखाई जाती है। रहस्य लीला का अर्थ वो गोप गोपियां जानते हैं, रहस्य लीला का बिगड़ा हुआ रूप है रासलीला। तो निरंतर बात को याद करना है तो वो अवस्था होनी है, कौन सी अवस्था, कैसी पूछना है तो किससे पूछो, गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, बाप का परिचय सबको देना, बाप आया हुआ है और ये अवस्था दे रहे हैं, इस वक्त की तरफ से रखिए, अभी अभी तो बताया, कौन सी खुशी की बात बताई, अतीन्द्रिय सुख की बात बताई, इंद्रियों से भी परे की स्टेज का सुख है जो मन बुद्धि की अति में भोगा जाता है, वो सुख का वर्षा बाप अभी दे रहे हैं, बस इसमें साथ जाने जाते हैं। अगर ये खुशी की खुराक मिल जाए, वो अतीन्द्रिय सुख महसूस होने लग जाए तो समझो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने लगे। लक्ष्मी नारायण ने जो 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर के उनको राजयोग सिखा करके राजा ही दूसरा भी। लक्ष्मी नारायण का ये चित्र है नंबर वन, क्यों? शिव बाबा का चित्र नंबर वन क्यों नहीं? लक्ष्मी नारायण का चित्र नंबर वन क्यों? चित्र है चरित्र की यात्रा, चरित्र ऊंचे से ऊंचा किसका है? चरित्र ऊंचे से ऊंचे किसका है? शिव बाबा का। फिर चित्र जो है वो शिव बाबा का क्यों नहीं ऊंचा होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण का ऊंचा क्यों बताया? गाड का बच्चा भी वन कहा जाता है। तो एक और फिर नई गतिविधि आएगी, उसमें एक का राज्य होगा या दो का राज्य होगा? राज्य किसका होगा? एक का होगा। दो साथ साथ नहीं बैठेंगे गति को। लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा ना? अभी भी अकेतवाणी में क्या बोला? एडवाइजर पार्टी और एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी का तो कार्य चल रहा है, लेकिन एडवाइजर पार्टी वो अभी मैदान में आनी है। उससे एडवाइस लिए बगैर कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, संपूर्णता की स्टेज पर नहीं पहुंचेगा। जैसे द्वापर युग में राजाएं होते थे तो अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को अपना मंत्री महामंत्री बनाते थे। जानते थे कि ब्राह्मण पवित्र रहते हैं, इनकी बुद्धि पवित्र होती है, पवित्र बुद्धि से ही हमको जो भी सलाह देंगे वो सिर्फ सलाह होगी। तो ऐसे ही मुख्य रूप से जो एडवांस पार्टी कही जाती है रुद्रमाला, उसको तो पवित्रता के रूप में लंगड़ा बताई दिया। प्रैक्टिकल कार्य में सफलता तब होगी जब एडवाइजर पार्टी भी उससे मिल जाए, तब ये विषय वैतरणी गति प्राप्त हो सकती है। ये संसार है विषय वैतरणी नदी, विषय सागर है, संसार सागर है। तो दो है, एक नारायण और दूसरी लक्ष्मी। जो अपने लक्ष्य को संपूर्ण प्राप्त करते हैं वो हमारा लक्ष्य है जीवन का। तो लक्ष्य को याद करेंगे तो हमारे अंदर भी लक्षण आएंगे। हमारा लक्ष्य शिव बाबा बनने का है या लक्ष्मी नारायण बनने का है? शिव बाबा बनने का तो लक्ष्य नहीं है। नहीं क्यों? क्योंकि शिव बाबा को नहीं कहा जाएगा सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। ये गुण शिव बाबा का नहीं है, ये किसका है? लक्ष्मी नारायण। शिव बाबा का गुण क्या है? शिव बाबा के गुण जो है वो तो एक ही है, साकार संपन्न रूप। जब तक विनाश नहीं होता है तब तक वो रूप संसार में प्रत्यक्ष रहेगा। विनाश होने के बाद वो तीन मूर्तियों का कार्य समाप्त हो जाएगा, लक्ष्य ही रह जाएगा, लक्ष्मी नारायण का रूप ही संसार में रह जाएगा। इसलिए एक मुरली में बोला, अगर तीव्र गति का पुरुषार्थ करना चाहते हो तो नारायण को याद करो। किसको किसको याद करें? नारायण को याद करें, स्वर्ग को याद करें, परमधाम को, घर को याद करें, या शिव बाबा को याद करें, एक को याद करें या अनेक को याद करें, सब एक ही है। कैसे? हाँ, क्योंकि एक मुरली बोला है सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही। तो वो शिव बाबा का कौन सा रूप हुआ जो सदा कायम? इस सृष्टि पर 5000 वर्ष काल रहता है, मन शिव सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है, जिस मुकर्र रथ में आदि से अंत तक जिसको नर से नारायण बना कर जाता है वो नारायण का रूप ही संपन्न रूप है, वो स्वरूप ही प्रजापिता वाली आत्मा, प्रजापिता वाली सोल है। इसके संसर्ग संपर्क में रहने वाली आत्मा जब तक संसर्ग संपर्क में रहेगी, जन्म जन्मांतर ऊंची स्टेज प्राप्त किए हुए रहेगी, और जब उनसे बिछोड़ होगा तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण, इसलिए बोला ये चित्र है नंबर वन। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप दिखलाए। कैसे मंगना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक है, पुण्य आधा तक माया राम पाप करा दिया है। कौन पाप कराता है, सिर्फ रावण या माया रावण? माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमने कोई पाप तो नहीं किया या हमसे कोई पाप तो नहीं होता है? पुण्य का काम करते रहते हैं। अब पुण्य क्या है, पाप क्या है, कैसे पता चले? जो श्रीमत के अनुकूल किया गया वो हुआ पुण्य, और श्रीमत के बरखिलाफ किया गया वो हुआ पाप। सवाल पैदा होता है श्रीमत क्या है? कोई कहते दीदी दादी बताता हूँ कि जो भी डायरेक्शन है वो श्रीमत है। कोई कहता है कि मुरली कागज के पन्नों में जो कुछ लिखा है वो श्रीमत है। कोई कहते हैं कि भाई पाप आया हुआ है तो ऊंचते ऊंचे पापा, पाप जब साकार सृष्टि पर आया हुआ है तो वो देह से चला रहा है, वो श्रीमत है। तो श्रीमत के अनुकूल चलना वो हुआ पुण्य, लेकिन पाप सदाकाल कभी तो उपलब्ध रहे, हर क्षण उपलब्ध रहे, ये हो सकता है क्या? बुद्धि योग से तो साथ रह सकते हैं, लेकिन सदाकाल साकार के साथ रहे ये सबके लिए संभव नहीं है। तो पाप पुण्य की परिभाषा कैसे समझे? तो बहुत छोटी सी बात है, जिस बात से, जिस काम से दूसरों को सदाकाल का सुख हो वो है पुण्य, और जिस काम से, जिस बात से, जिस संकल्प से दूसरों को सदाकाल का दुख हो जाए वो है पाप। अल्पकाल का सुख देना उसको पुण्य नहीं कहेंगे। अल्पकाल का दुख दिया वो कुछ न कुछ पाप की श्रेणी में जाएगा, लेकिन अल्पकाल का जो सुख दिया है और रिजल्ट में लंबे समय का दुख मिलता है किसी को या अपनी आत्मा को मिलता है तो उसको पुण्य नहीं कहेंगे, पाप ही कहेंगे। तो बोला कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। अब अपने आप से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता? अंधों की लाठी हम बने हैं, पाप कहते हैं मनमना भव। ये भी पूछना होता है कि मनमना भव किसने कहा? मनमना भव वो तो ठीक है, मेरे मन में समा जाए, मन मेरे मन के संकल्पों में समा जाए, मेरे मन के संकल्पों में अपने संकल्पों को डुबो दे। तो जब संकल्प ही डूब जाएंगे, संकल्प ही बाप समान हो जाएंगे तो वाचा भी कैसे चलेगी? पहले संकल्प में बात आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मणे में आती है। तो संकल्प रूपी बीज को ही अगर बाप समान बना दिया तो वाचा और कर्मणा तो जो स्वयं उस रूप में टिका होगा वो कहेगा या दूसरा कहेगा? भगवान बाप ने ही आकर के कहा ना, मन मना करो, मेरे मन के संकल्पों में अपने मन के संकल्पों को तिरोहित कर दे। वह तो कहेंगे कृष्ण ने कहा, मनमाना भव किसने कहा? वो कहेंगे कृष्ण ने कहा, कृष्ण कहो, दादा लेखराज ब्रह्मा कहो, उन्होंने कहा। मनमाना भव मेरे मन के संकल्पों में समा जा। अच्छा, अगर दादा लेखराज ब्रह्मा के मन के संकल्पों में ही समा जाए, जैसे प्रैक्टिकल में वह समा गए, तो उनका रिजल्ट क्या हुआ? सिद्धि प्राप्त हुई? जीवन रहते रहते सिद्धि प्राप्त हुई? सिद्धि तो प्राप्त नहीं हुई, स्वयं भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हुए, अपने फॉलोअर्स को भी सिद्धि प्राप्त नहीं कराए थे, जैसे और धर्म पिता है, स्वयं भी नीचे गिरे, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले गए। तो कहा मन मना भव किसने कहा? वह तो कहेंगे कृष्ण, माना ब्रह्मा ने कहा। कौन कहेंगे वह माने कौन है? वह ब्राह्मण कहेंगे कि कृष्ण ने कहा मन मना भव, और तुम जानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने कहा मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जाओ। जरूर कहने वाले के मन के संकल्पों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि संकल्पों की सिद्धि से वाक्य की सिद्धि और करुणा की सिद्धि इतनी हद तक पहुंचे कि नई दुनिया स्थापन हो जाए, ऐसा नया सशक्त संगठन स्थापन हो जाए जिसमें कोई भी विकारी प्रवेश कर न सके। ये क्या बोला? पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पांड रख नहीं सकेगा। तो तुम जानते हो परम पिता परमात्मा शिव ने कहा मन मना भव, रात दिन का कर्म है कहने वाले। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, इतनी की शिव जयंती पहले और गीता जयंती बाद में। गीता पति भगवान कहा जाता है तो माँ पहले कि बाप पहले है? किसी बच्चे से पूछा जाए कि पहले माँ होती है या बाप होता है, तो बच्चा तो जानता ही नहीं, ये तो माँ जाने बाप जाने, लेकिन पहले बाद का सवाल ही नहीं। जब बीज आरोपण होता है तो साथ साथ होता है या पहले बाद में होता है? साथ ही साथ होता है। तो गीता जयंती बाद में नहीं हो सकती, कब होती है? शिव जयंती होती है, उसके साथ ही गीता जयंती, माना शिव अकेला नहीं आता, इसके साथ आता है, गीता माता के साथ आता है, और गीता जयंती के साथ कृष्ण जयंती। गीता की जय जयकार के साथ कृष्ण बच्चे की भी जय जयकार होती है। तुम जानते हो क्या भविष्य में प्रिंस बनेंगे? प्रिंस बनने क्या भविष्य में प्रिंस बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अगले जन्म में बनेंगे। जैसे ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में जाकर के प्रिंस कृष्ण बनेगा, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? इसी जीवन में हम क्या बन जाए? फुल बैगर, बैगर के पास फिर कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब कुछ बाप का है। प्रैक्टिकल में ऐसा करके दिखा दे कि मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, साब ईश्वरीय कि मैं साहा, तो क्या हो गए? जिसका सब कुछ ईश्वरीय कि मैं साहा हो जाए, तो तो क्या हो गया? राजा हो गया कि प्रिंस हो गया कि बैगर हो गया? बैगर हो गया ना। तो पहले फुल बैगर, फिर बाद में फुल प्रिंस बन गया। बैगर प्रिंस, ये एम आपने की राजियों की। सिर्फ प्रिंस बनना है, ये एम आपने की नहीं है, वो भी तरीका बता दिया क्या बनना है। पांडव पहले बैगर बनते, कोई राजपाट नहीं, कोई मान मर्तबा नहीं, डर करके भिखारी होते। एक जो बैगर बनते हैं फुल बैगर, वही फुल प्रिंस बनते हैं। जिस नंबर के बैगर उसी नंबर के प्रिंस बनेंगे। घबराने की बात नहीं है क्या? जितना करेंगे उतना ही प्राप्ति करेंगे। तो ये हिमाचल राज्यों की है, तुम सिद्ध करके बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था क्या? ये किसको बताने की बात है? पहले बाहर की दुनिया वालों को या ब्राह्मणों की दुनिया को? पहले तो ये बात ब्राह्मणों की दुनिया में सिद्ध हो क्या कि गीता का भगवान दादा लेखराज कृष्ण की सोल, जिसने साकार में ब्राह्मणों की दुनिया में पार्ट बजाया ब्रह्मा के रूप में, वो गीता का भगवान का प्रैक्टिकल साकार रूप नहीं है। कोई निराकारी स्टेज वाला प्रैक्टिकल में संसार में अभी भी वो गीता का भगवान अधिकारी कर रहा है। वो गीता का भगवान जो इस सृष्टि पर आया हुआ है, वही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश उसी के द्वारा होना। तो बोला कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वो तो निराकार था। कृष्ण की सोल जिसने अंतिम जन्म में दादा लेखराज ब्रह्मा का पाठ बजाया, उसका चेहरा मोहरा चित्र साकार दिखाया जाता है या निराकारी चीज वाले दिखाया जाता है? वो तो साकार ही। तो गीता का भगवान वो तो निराकार, तो सर्वव्यापी का ज्ञान ही होता है क्या? कि दादा लेखराज वो भी भगवान का रूप, दीदी दादी दादा वो भी भगवान का रूप, वो भी श्रीमत देने वाले हो गए। जो संदली पे बैठा वही दृष्टि देने वाला भगवान हो गया, दृष्टि से सृष्टि सुधारने वाला। ये सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए कब? जब हम यही बात साबित कर गए कि गीता का भगवान श्री कृष्ण दादा लेखराज ब्रह्मा का रूप साकार रूप नहीं था, वो तो निराकारी स्टेज वाला रूप है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। सर्वता सदगति दाता पतित पावन बाप है। कौन है? पतितों को पावन बनाने वाला बाप है। पहले मन बुद्धि को पवित्र बनाता है। कहते भी है वो लिबरेटर, मुख से कहते भी है, क्या कहते हैं कि वो लिबरेट करता है, छुड़ाता है। कैसे छुड़ाता है? दुख दर्दों से छुड़ाता है। दुख दर्द कैसे पैदा होते हैं? विकार, माने विकारों से छुड़ाता है। तो कहते तो है कि वो लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते। जब दुख दर्दों से विकारों से छुड़ाने वाला है, सबसे मुख्य विकार कौन सा है? काम विकार। तो जो काम विकार, क्रोध विकार, इन विकारों से छुड़ाने वाला होगा, उसके खुद के अंदर के वो विकार भस्म हुए होने चाहिए या नहीं? जिसके अंदर वो काम विकार जो सूक्ष्म है वो भस्म नहीं हुआ, तो वो संसार में शंकर के रूप में प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? शंकर के लिए तो गायन है। क्या गायन है? कि आप खुली और कामदेव भक्त हो गया। कामदेव कोई बाहर से कोई व्यक्ति थोड़ा ही होता है, कोई देवता होता है जो चूल्हा खोलने से भस्म हो जाता है, नहीं। ये तो ज्ञान का तीसरा नेत्र है। इस ज्ञान के तीसरे नेत्र खुलने से अंदर का जो अपने अंदर का जो काम विकार है वो पहले भस्म होता है, वो ज्ञान का दीपक पहले जलता है। दीपावली में यमराज का दीपक पहले जलाया जाता है, फिर बड़े दीपक से छोटे छोटे दीपक जलाए जाते हैं। तो ये हुआ ज्ञान के दीपक से रोशनी, अपने अंदर की वो रोशनी हो जाए कि अज्ञान का वो भूत भाग जाए जो अज्ञान अंधकार फैलाता है। कामांध क्रोधांध लोभांध अंधा बनाता है कि सर्वव्यापी है या एक व्यापी है। अगर सर्वव्यापी नहीं है कहते हैं तो एक व्यापी बताना चाहिए कि वो एक कौन है जिसमें वो व्यापक है, वो मोबाइल में तू कौन सा है। कि ब्रह्मा का रथ है मुकर्रर रथ भी हो गया और वो टेम्परेरी रथ भी हो गया, दोनों बातें कैसे साबित होंगी। धर्म के बारे में जो आता है सो बोल देती, मुख्य धर्म है तीन, देवता धर्म तो आधा कर्म चलते, फिर तीन मुख्य धर्म और चलते कौन कौन से, इस्लामी बौद्धी और क्रिश्चियन। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। संगम युग में कौन से धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण धर्म जो अधूरे ब्राह्मण रह जाते हैं वो क्षत्रिय बन जाते हैं, और जो संपूर्ण ब्राह्मण बन जाते हैं वो देवता बन जाते हैं। तो तीन धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण धर्म क्षत्रिय धर्म और पाप होने वाले देवता। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है कि पापी आकर ये तीन धर्म स्थापन करते हैं, तीन गुट प्रत्यक्ष हो जाते हैं ब्राह्मण की दुनिया। एक को तो ब्राह्मण मात्र कहे जाते हैं, एक ऐसे हैं जो ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं, उनके अंदर छाप तेज आ जाता है, और दूसरे सबसे श्रेष्ठ वो है जो त्राप कर रहे हैं, पार हो जाते हैं किसी विकारों की दुनिया से, ब्राह्मण सो देवता। वो तो सत्य को लाखों वर्ष कह देते हैं, कौन दुनिया वाले, ये ब्राह्मण की दुनिया लाखों वर्ष कह देते हैं, दुनिया वाले। दुनिया वालों में तो फाउंडेशन तक पड़ा है, ब्राह्मण की दुनिया में ही ये शूटिंग लंबे समय तक करती है, सचिव शूटिंग। इसलिए फिर वहां भी जाकर शास्त्र में लिख देते हैं कि सचिव लाखों वर्ष का है। आज सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु ये अपने धर्म को भूल गए हैं, खेल रिलीजियस बन गए हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते, क्यों? जो देवी देवता सनातन धर्म के हैं वो क्यों छोड़ देते, क्रिश्चियन लोग क्यों नहीं छोड़ते है? ये तो बोला है क्रिश्चियन से बाद में आते, क्रिश्चियन से न सतो प्रधान बनते हैं ज्यादा अटके रहते हैं। जो सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, देवी देवता सनातन धर्म, वो ही आत्मा सबसे नीचे गिरती है, ज्यादा काम की बन जाती है, वही दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं। अपने धर्म को भूल देने लीजिए कर पड़े हैं, कैसे कहते साथ में अभी कौन सा विशेष राज्य चल रहा है? इस राज्य का नाम क्या दिया? धर्म निरपेक्ष राज्य, ऐसा राज्य हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। जब धर्म की अपेक्षा नहीं है और रिलीजन स्टेट कहा जाता है तो जो राज्य चलेगा उसमें ताकत रहेगी कि अराजकता फैलती रहेगी? जहां देखो वहां अराजकता, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नियम कानून चलता नहीं। जहां देखो वहां कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। तो अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन जाती है। इसलिए लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। और क्रिश्चियंस क्राइस्ट की राशि किससे भिड़ाई है? कृष्ण से। माने कृष्ण की सोल भी ऐसे ही काट बजाती होगी, कैसा कि वो अपने धर्म को छोड़ती नहीं है। माने कृष्ण की सोल भी ज्यादा सत्व प्रधान नहीं बनती और ज्यादा तमो प्रधान भी नहीं बनती। इतनी सत्व प्रधान भी नहीं बनती, एकदम सचिव के नई सृष्टि के आदि में पहुंच जाए और नई जनरेशन को पैदा करने वाला बन जाए, नहीं। और इतना तमो प्रधान भी नहीं बनती कि एकदम दुनिया में आकर के विकारों की दुनिया में गोटी खाकर के सबसे नीचे गिर जाए। इसलिए सीढ़ी की चित्र में क्या दिखा है? आज में सीढ़ी का जो शुरुआत का रूप है, 30-45 इंच का जो चित्र है, उसमें दिखाया है राधा कृष्ण को सबसे पहले। कौन से राधा कृष्ण को दिखाया है? चंद्रमी को जाकर तो राम सीता वाली आत्माएं हुई। फिर बाद में कौन सा रूप दिखाया? सीढ़ी के अंदर, वो तो सीढ़ी के बाहर दिखाया, वो तो सबसे ऊंचा रूप हो गया। फिर सीढ़ी के अंदर कौन सा रूप दिखाया? राधा कृष्ण 16 कलर तक हुए। माना संगम में सूर्य की स्टेज है, सूर्यवंशियों की। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? नहीं, वो तो कला की तो होता है, कलाओं से भी ऊपर की स्टेज है। वो तो ऐसी स्टेज को धारण करते हैं जो दृष्टि से भी संतान पैदा कर लेगी, स्टेज से ऊंचे उठ जाती है। सिर्फ वाइब्रेशन की स्टेज से ही संतान पैदा कर लेते हैं, जैसे पपीते का वृक्ष। मादा वृक्ष यहाँ खड़ा हुआ है और कई मील दूर अगर एक भी नर वृक्ष खड़ा हुआ होगा तो मादा में फल आएंगे, अगर नहीं होगा तो मादा फलदायी नहीं होगी। तो जब पेड़ पौधों में भी इतनी ताकत है कि दूर से वाइब्रेशन से अपनी शक्ति इतनी शक्ति खींच लेते हैं, तो मनुष्य में वो शक्ति पैदा नहीं हो सकती। ये बोर का मिसाल, ये पपीते का मिसाल, ये मिसाल इसी समय के लिए है। सर्प का मिसाल, भ्रमणी का मिसाल, ये दुनिया में जो मिसाल कायम है वो इसी समय के लिए है, ताकि हम इस बात की सच्चाई को मान सके कि ऐसा भी हो सकता है। तो कृष्ण और राम, सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये दो वंश हैं। कृष्ण की सोल न ज्यादा नीचे गिरती है न ज्यादा ऊंची उठती है। सीढ़ी के हाथ में भी सेकेंडरी स्टेज दिखाई गई और सीढ़ी के अंत में भी क्या दिखाया? राम की आत्मा एकदम बैगर के रूप में पड़ी हुई है कांटों की सैया पर। और ब्रह्मा का रूप कृष्ण की सोल ऐसा दिखाया, खड़ा हुआ दिखाया, वो एक कम नीचे नहीं करता, फिर भी खड़ा हुआ रहता। तो बोला अपने धर्म को भूल इन रिलीजियस बन जाते हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। तो कृष्ण की सोल भी अपने धर्म की जो मूल मान्यताएं हैं उनको नहीं छोड़ती। वो जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया है, इस्लामी फिर बौद्धी क्रिश्चियन मुख्य हैं, बाकी छोटे छोटे धर्म से बहुत है। कहां से वृद्धि हुई ये कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ, इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियंस भी तो मशहूर हैं, बाकी तो देखो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना भिन्न भिन्न धर्म है, भिन्न भिन्न नाम। तो भिन्न भिन्न धर्म और भिन्न भिन्न नाम होने की वजह से सब मुझ गए। ये नहीं जानते हैं कि मुख्य धर्म शास्त्र चार है। कौन कौन से? सनातन धर्म का मुख्य शास्त्र कौन सा है? श्रीमद भगवत गीता और मुसलमानों का कुरान, क्रिश्चियंस का बाइबल और बौद्धियों का धम्मपद। तो इसमें डीटीज में ब्राह्मणिज में वो भी आ गया। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, ये किसको पता नहीं है? जाते हैं ब्राह्मण देवता है ना, परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना आकर्ष की है। परंतु ये सताते पढ़ते ऐसे हैं जैसे कुछ जानते हैं, तोते के माफिक पढ़ते रहते हैं। ये है कांटों का जंगल, भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, ये भी जानते हैं, परंतु वह कब था, कैसे था, किसने गार्डन ऑफ फ्लावर बनाया, परमात्मा क्या चीज है, ये कोई नहीं जानते। तो सब आसन हो गए। आसन होने के कारण ये लड़ाई झगड़े आदि चलते रहते हैं। आसन किसे कहा जाता है? जिनका कोई धनी दोरी नहीं होता, सिर्फ भक्ति में ही ये खुश होते रहते हैं। ज्ञान नाम की चीज नहीं है। अब आप आए हैं सूर्य करने के लिए, तो तुम बच्चे जानते हो हम सूर्य में आए हैं। बाप ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। बल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं है। वो समझते हैं कि कोई तीसरा नेत्र वाला कोई मनुष्य होता होगा। तीसरे नेत्र की बात नहीं है, ये कौन सा नेत्र है? ये है मनोबुद्धि की आंख खुलना। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है। उन्होंने फिर देवती दे दिया देवताओं। देवताओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र होता है या नहीं होता है? देवता है तो बुद्धि होंगे, उनको तो सारे विश्व का ज्ञान ही नहीं होता। उस समय तो ये ज्ञान होने की दरकार ही नहीं। इस समय तुम ब्राह्मण बच्चे हो, त्रिकाल त्रिनेत्री, तो उन्होंने दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं है, उसमें तो फिर कौरव पांडवों आदि की लड़ाई दिखाई थी, घोड़े गाड़ी आदि दिखाई दी है। कितने घोड़े दिखाए? चार घोड़े दिखाई दिए। लगाम किसके हाथ में दिखाई? कृष्ण के हाथ में लगाम दिखाई है। रथ किसका दिखाया है? रथ किसका? अर्जुन का रथ है। सारथी कृष्ण भगवान दिखाई दिया है। चार घोड़ों की लगाम भगवान के हाथ में दिखाई दी है। भगवान कृष्ण को बना दिया। अब ये सब बातें हैं कहां की? अरे तो ये सारी सारी बातें संगम युग की बातें हैं। जिन्होंने इन बातों को समझाया है वो वैसा पुरुषार्थ भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हो और उनके बीच में रथ पे खड़े होकर के भगवान कोई ज्ञान दे। वो तो स्थूल रूप में समझ लिए। कवि की भाषा तो अलंकारिक भाषा होती है। उस भाषा को समझना ये भी तो जो कवि जैसे बच्चे होंगे वो ही तो समझेंगे। कहते भी हैं कैसे समझे कवि या समझे रवि, जिन कवियों ने वो कथा कहानियां लिखी है प्राचीन काल में वो कवि तो चले गए। बाद में उनके अर्थ उनकी व्याख्या परवर्ती शास्त्रकारों ने कर दी। परवर्ती शास्त्रकारों की जैसी विकारी बुद्धि थी वैसा उन्होंने साथ लगा दी। इसलिए कहा जाता है कैसे समझे कवि या समझे रवि। रवि माने ज्ञान सूर्य। उन कवियों की भाषा को उनकी व्याख्या को उन शास्त्रों के मर्म को परमात्मा स्वयं आकर के क्लियर करता है। सबको बात क्लियर होती है। तो घोड़े गए आज की बात नहीं है। युद्ध के मैदान में एक अर्जुन को बैठ सुनाया गया क्या? एक अर्जुन की बात नहीं है। न एक अर्जुन ने पुरुषार्थ का अर्जन किया। कमाई तो सभी ने की होगी। लड़ाई के मैदान में रणिया बैठ मारते थे क्या? तुम ये समझाएंगे तो कहेंगे शास्त्रों आदि को ये लोग नहीं मानते। तुम कह सकते हो उन शास्त्रों को क्यों नहीं मानते? हम तो जानते भी हैं और मानते भी। ये सब भक्ति मार्ग की समिति गया हुआ है। ज्ञान और भक्ति, जहां ज्ञान होता है वहां भक्ति नहीं हो सकती। जहां भक्ति का अंश है वहां ज्ञान नहीं हो सकता। जहां रात है वहां दिन नहीं हो सकता। जहां दिन है वहां रात नहीं हो सकती। जब रावण राज होता है तब ही भक्ति शुरू होती है। क्या रावण राज्य माने में अनेक मतों का राज्य, एक का राज्य नहीं। रावण के कितने से दिखाए जाते? दस से। दस मतों का राज्य, दस से संगठित होकर के जो राज्य चलाते हैं उसका नाम दे दिया है पंचायती राज। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांच पंच हैं। इनकी पांच सहयोगियां दिखाई गई है मंद उदरी के रूप में। उदर उनका कैसा है? उदर माना पेट। उनका मंद बुद्धि रूपी जो पेट है, बुद्धि रूपी पेट है, वो अपनी अकल नहीं चला सकती। पांच पंचों के आधार पर ही चलेंगे। विविचारी बुद्धि होगी। इसलिए बावन गोड़ा एक से ज्ञान सुनेंगे तो आप विविचारी ज्ञान होगा। अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान भी कैसा हो जाएगा? विविचारी ज्ञान। तो जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। भारतवासी बाम मार्ग में जाकर के धर्म भ्रष्ट और कलम भ्रष्ट हो गए। इसलिए अब हिंदू कहलाएंगे। पतित बन गए हैं। ये पतित किसने बनाया? रावण माने? रावण माने कौन? रावण का अर्थ क्या है? रावण अर्थात रुलाने वाला, जो लोगों को रुलाता है वो है रावण। रोने की दुनिया कौन से युग में शुरू होती है? द्वापर। नाम ही रख दिया द्वापुर। दो पुर हो गए, दो बातें हो गई, दो मतें हो गई। ये इस्लामी जब से आए हैं तो उन्होंने दृष्टि का कनेक्शन फैलाया। नहीं तो राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी, और कोई भी विचार की बात ही नहीं थी। ये स्वामी जब से आए उन्होंने विचार फैलाया तो भारतवासी जो देवताएं थे वो उनके विरुद्ध सक्रिय हो गए और उनको भारत से दूर हर देशों की ओर खदेड़ दिया। वहां जाकर तो उन्होंने खूब मनमानी की, भाई बहनों में व्यविचार फैलाया, भाई बहनों में शादियां होने लगी क्योंकि उन्हें तो अपनी जनरेशन बढ़ानी थी। तो ये व्यविचारी रावण राजे जब से आया तब से दुनिया दुख की दुनिया शुरू हो गई। तो ये रावण पतित बनाता है, व्यविचारी बनाता है, रावण मन अनेक मन। ऐसे नहीं कि सिर्फ इस्लामी ही आए, मोदी भी आए, क्रिश्चियंस भी आए, ये सब अनेक मत फैलाने वाले आते गए और दुनिया में दुख दर्द बढ़ते गए। रावण को जलाते भी, ये जलाने करने की यादगार भी कहां की है? संगठन में ही तो ब्राह्मण हुए होंगे, रावण संप्रदाय के ब्राह्मण और राम संप्रदाय के ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे विचारी विचार का पोषण करने वाले ब्राह्मण, ये सब शूटिंग ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में होती है। रावण को जलाते हैं, क्यों जलाते हैं किसी का पुतला? जब कोई ज्यादा दुखी होता है तो उसका पुतला जलाया जाता है। तो यहाँ पुतला बनाकर के जलाने की बात नहीं है, ब्राह्मण तो जानते हैं कि पुतला को जलाने से कोई दुख का अंत नहीं हो जाएगा। यहाँ तो ऐसा ज्ञान निकलता है जिस ज्ञान के आधार पर रावण संप्रदाय कौन कौन है उनके चेहरे भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं और राम संप्रदाय कौन कौन है जो राम की मत पर चलते हैं उनके चेहरे भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। ये बातें जब प्रत्यक्ष होती है तो जो रावण संप्रदाय है उनका दिल जलता, ये उनका दिल जलना ही रावण को जलाना, ये कार्य राम संप्रदाय की आत्मा ही करती है। रावण को जलाते हैं, समझते हैं ये परंपरा से जलाता है, परंपरा की बात ही नहीं है। पहले सतो प्रधान स्टेज होती है तो सब सबको सुख देते हैं, सतो सामान्य स्टेज में भी सुख ही देते हैं। जब द्वैत फैलता है तो दो दो राज्य और दो दो मतें पैदा होती है, तब रावण राज्य फैलते हैं। रावण का सुख जब बढ़ते बढ़ते अतिक हो जाता है तो उसको जलाना शुरू करते हैं, तो आती तो कलयुग में होती है। कलयुग में ही ये मेले मलाखड़े शुरू हुए हैं, कलयुग में ही ये देवियों की पूजा शुरू हुई है, कलयुग में ही ये रावण का पुतला जलाना शुरू हुआ है। द्वापर युग में इतना दुख नहीं था और सतयुग में तो रावण राज्य था ही नहीं, एक का राज्य था, लक्ष्मी नारायण के राज्य में ही फैल सकता, एक के हाथ में होती थी। जब आयरन एज में आएंगे तब तो आकर के गोल्डन एज स्थापन हो, बाप समझाते हैं फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है एक के साथ, तुमको पटरानी बनाते, तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं कि तुम मेरे थे, अभी भी तुम मुझे भूल गए, ये अभिमानी माया के बन गए। बाकी भगाने आने की तो बात ही नहीं, मैं तुम याद करो, याद की सारी मेहनत है। बहुत हैं जो देह अभिमान में आकर के विकर्म करते रहते हैं, बाप जानते हैं ये आत्मा मुझे याद नहीं करती है और औरों को याद करने लगती है, جن کو یاد کرتے ہیں پھر انہیں کی مت پر چل پڑتے ہیں, تو انیکوں کی مت پر چلے یا ایک ہی مت پر چلے, راون راج استھاپن کرتے ہیں یا رام راج استھاپن کرتے ہیں. بچوں کا پاپ کا گھڑا بھاری بن جاتا ہے. کیوں بچوں کا ہی کیوں بولا, دنیا والوں کا پاپ کا گھڑا بھاری نہیں ہوتا ہے. بچوں کا اس لیے بولا کہ بچے جب گیانی ہو جاتے ہیں, گیان بدھی میں بیٹھنے کے باوجود بھی اگر وکرم کرتے ہیں پاپ کرم کرتے ہیں تو سو گنا پاپ کا بوجھ کرتا ہے. اس لیے گیان ملنے کے بعد ایک بار پاپ کو پہچاننے کے بعد بہت سترک ہونا چاہیے کہ ہم سے کوئی پاپ کرم نہ ہو جائے. بچوں کا ہی پاپ کا بڑا بھاری بنتا ہے اور ان کو راستہ بتانے کے بدلے خود بھول جاتے ہیں تو اور ہی جات کی زندگی کو پا لیتے ہیں. بڑی اونچ منزل ہے. کہتے ہیں چڑھے تو چاکھے بیکنٹھ پر. کیا اونچی چڑھتی کلا میں اگر چڑھ جائیں تو اندر میں اتنی خوشی آتی ہے جیسے بیکنٹھ کا سکھ انوبھو کرتی ہے, اور گرے تو چپنا چور. اور اس چیز سے جو باپ نے بتائی ہے پوترتا کی منزل, اس سے اگر نیچے گرے پوترتا کو چھوڑ دیا آپ کا پتر جیون بنا لیا تو چکنا چور ہو جاتا. من بدھی سے گیان ہی اڑ جاتا ہے. اپنی بدھی میں سے گیان اڑ گیا تو دوسروں کو کیا سنائے گا. چڑھتی کلا تیرے بہانے سرو کا بلا. سرو کا بلا کب کریں گے, پہلے اپنا بھلا ہوگا تب تو سرو کا بھلا کریں گے. دوسروں کی سیوا کرنے سے سرو کا بھلا ہوتا ہے. دوسروں کی سیوا وہی کر سکے گا, اسی کا اثر دوسروں کے اوپر ہوگا جو خود نرمکاری جیون میں بتائے گا. وکاروں سے دور بھاگے گا. من بدھی میں آتمک اسٹیج کا رمن ہوگا تو وہ آتما دوسروں کو بھی آتمک اسٹیج میں سکھائے گی, اونچی چڑھتی کلا میں لے جائے گی. یہ تو خود ہی نیچے گرے گا تو دوسروں کو بھی نیچے گرے گا. تو کہتے ہیں چڑھے تو چاکھے بیکن چڑھے, گرے تو چکنا چڑھے. ابھی یہ راجا ہی استھاپن ہو رہی ہے, یا تو راجا ہی کی اونچی گتی پر بیٹھنے کی شوٹنگ کرتے ہیں, یا تو پھر نیچے گرتے ہیں تو داخ ساتھیوں کے بھی داخ ساتھی بڑھ پڑتے ہیں. تیسرا پیپر اس بات میں دیکھو فرق کتنا پڑ جاتا ہے. کوئی تو پڑھ کر کے آسمان میں چڑھ جاتے ہیں اور کوئی پٹ میں گر جاتے ہیں. بدھی ہی دل ہو جاتی ہے تو پھر پڑھ ہی نہیں سکتے. کوئی کوئی کہتے ہیں بابا ہم کس کو سمجھا نہیں سکتے ہیں. تو بابا کہتے ہیں اچھا صرف اپن کو آتما سمجھو, اپن کو آتما سمجھے مجھے باپ کو یاد کرو تو میں تم کو سکھ دوں گا سب سے لے جاؤں گا. پرنتو یاد بھی یاد کریں تو اوروں کو بھی یاد دلا دیں. باپ کو یاد کریں تو باپ نش ہو جائیں. ان کی یاد بگڑے تم سکھدھام میں جا نہیں سکتے. کیا بات ان کی یاد بگڑے, ان کی یاد بگڑ جائے بھوشیہ میں پرماتما پاٹ کا جو روپ سنسار میں پرتکش ہونے والا ہے اس سوروپ کی یاد بگڑ رہے تم سنگ میں جا نہیں سکتے. ایک ہی جنم کا ورثہ نراکار باپ سے مل سکتا ہے. اس کی طرف اشارہ کیا اس نراکاری اسٹیج والے پرماتما باپ کی طرف اشارہ کیا جو بھوشیہ میں سنسار میں پرتکش ہونے والا ہے. اس کی جنموں کا ورثہ سکھ کا ورثہ دے کر کے جاتا ہے. تریسٹھ جنموں کا ورثہ وہ نہیں دیتا. जन्म तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले धर्म गुरु आते हैं तो उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। कोई तो रुचि स्थिति से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लाटरी मिल गई तो बस उनके ऊपर विश्वास कैसे आते हैं। कोई को 5 करोड़ फायदा हो जाएगा तो बहुत मेहनत करेगा, परंतु वो तो सुख अल्पकाल का सुख है, सदाकाल का सुख नहीं है। अल्पकाल के सुख में बुद्धि को रहने लेते हैं, 21 जन्म के लिए है उसके व्यर्थ है वो नहीं दे सकते, परंतु मनुष्य इन बातों को जानते हैं, उनको दोष भी नहीं दे सकते हैं। अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। इस समय सब है पतित तमो प्रधान मनुष्य, अपने बाप को भी नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह देते। अगर अपन बाप को जानते हो तो क्या कहेंगे, सर्वव्यापी कहेंगे या एक व्यापी कहेंगे? जानते हैं तो कहेंगे एक में व्यापक है, अनेकों में व्यापक नहीं है, वो एक में आया हुआ है, एक ही वो कलागत है जिससे हमको श्रीमत लेनी है। ऐसे तो बाप राजी उसके कागज के स्वर की बात सही दे रहे हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं, कोई समझाते भी है परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता है। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते, योग ही मुख्य, तुम योग बनते विश्व के मालिक बनते। दादा ऐसे नहीं कहा कि सर्विस के बल से विश्व के मालिक बनते हो या धारणा के बल से विश्व के मालिक बनते हो या ज्ञान के बल से विश्व के मालिक बनते हो, क्या कहा? या कोई भोग बल से विश्व का मालिक बनता है, हिटलर नेपोलियन मिशन नहीं, ऐसे विश्व के मालिक बनते हो, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, श्री कृष्ण ने थोड़े सिखाया, हमारा बाबा क्या कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की सोल ब्रह्मा ने राजयोग नहीं सिखाया, क्योंकि राजयोग की तो रिजल्ट आनी चाहिए, कैंसर आनी चाहिए, राजयोग से राजा ही मिलनी चाहिए। जो राज्य को सीखते हैं दूसरों को सिखाते हैं वो आधीन बनेंगे या स्वाधीन बनेंगे? जो राज्य को सीखने वाले हैं सिखाने वाले हैं न दूसरों को आधीन बनाएंगे और न खुद आधीन बने, कोई देहधारी उनको आधीन नहीं बना सकता। ये सीमत चलाएगी, बैंक चलाएगी, बाकी किसी मनुष्य भी उनको आधीन होने वाले नहीं। इसलिए क्या बोला व्यक्त वाली, आधीन होने वाला राजा ही का अवतार नहीं बन सकता, विश्व का मालिक नहीं बन सकता। बाकी राजयोग भगवान ने सिखाया, श्रीकृष्ण ने नहीं सिखाया था। याद की आख्या बड़ी अच्छी है, याद करो तो वर्षा सामने आ जाता, लेकिन तुम्हें सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाता है, तुम ड्रामा देख करके आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाए, कोई को बताने में टाइम लगे। ये भी ऐसे है वीर और घाट, ये चक्र बड़ा क्लियर है, शांति धाम सुख धाम और दुख धाम, ये सेकंड का काम है समझना और समझाने, परंतु याद भी रहेगा। मुख्य बात है बाप का बुद्धि, बाप कहते मेरे को याद करने से तो सब कुछ याद जाएंगे, ऐसे नहीं कि ज्ञान का बोधन करें